सरस्वती नमस्तुभ्यं वर्धे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वाद सांग वही सरस्वती माता की कृपा प्रसाद से सरस्वती की प्रतिमूर्ति पूज्यगणी ज्ञानमती माता की छत्र छाया में आप सब ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं। छह ढाला के माध्यम से जैन सिद्धांत को, अर्थात जिसके अंदर चारों ही अनुयोग समाविष्ट हैं, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, इनमें पारंगत होने के लिए और अपने जीवन के अंदर ज्ञान को आचरण के रूप में उतारने के लिए छह ढाला ग्रंथ बहुत ही प्रचलित हुआ है। उसमें तृतीय ढाल चल रही है और आप सबको तीन ढाल की परीक्षा 1 जून को देना है। 1 जून रविवार है, दिन में 3:30 बजे छह ढाला के तीन अध्याय, तीन ढाल की परीक्षा, जैसे पूर्व की परीक्षाएं देते आ रहे हैं, आप एक दूसरे को सूचित करें और सभी लोग छह ढाला की तीन ढाल की परीक्षा में भाग लेकर उत्तीर्णता प्राप्त कीजिए। जैसे पूर्व की अनेक परीक्षाएं आपने दिया है, उसी प्रकार से छह ढाला की भी परीक्षा तीन ढालों की देना है और तीन अध्यायों के माध्यम से चारों गतियों को दुख, चारों गतियों में जाकर दुख सहन करने की कहानी, कुछ पद्यों के माध्यम से अनादिकाल से अनंत जीवों की संसार कथा और व्यथा को आप सबने श्रवण किया है और उसके मूल कारण को भी जाना कि जैसे मोक्ष का मार्ग है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, ऐसे मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणि संसार मार्गा। तो संसार में भ्रमण करने का मूल कारण मिथ्यात्व है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। उससे हट करके सम्यक्त की ओर आ करके रत्नत्रय को धारण करने की जो प्रेरणाएं दी गई हैं, उसी में से आज हम 7 तत्वों में से मोक्ष तत्व का लक्षण जानेंगे। जीव अजीव, आश्रव बंध, संवर निद्रा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। इन्हीं में पुण्य और पाप मिलाए जाते हैं तो 9 पदार्थ बन जाते हैं जो भी हैं। इन 7 तत्वों की बात जानी कि इसलिए विशेष रूप से बताई है कि जो जिनेंद्र भगवान ने जिस तत्व का जैसा वर्णन किया है उस तत्व का उसी रूप में श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। और 6 तत्वों के बारे में बताया जा चुका कि कैसे कैसे कर्म आते हैं, वह आश्रव है, कैसे आते हुए कर्मों को रोका जाता है संवर है, और कैसे पुराने कर्म निर्जीर्ण होते हैं और नए शुभ कर्मों का बंद करने के लिए जो पुराने कर्मों की निर्जरा होती है, निर्जरा तत्व के बारे में हम मोक्ष को जानना है। तो श्लोक नंबर 10 पर आइएगा, तृतीय ढाल में। सकल कर्म ते रहित अवस्था सो शिव थिर सुखकारी, यह विधि जो सरदाता त्वन की सो समकित व्यवहारी। देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दया जुत सारो, ये हुमान समकित को कारण अष्ट अंग जुत धारो। इन 4 लाइनों में बहुत सारी बात पंडित दौलत राम जी ने बता दिया। निर्जरा का मतलब था कर्मों का एक देश झड़ जाना और बाकी कर्म अभी रहते हैं, वह निर्जरा है। और मोक्ष का मतलब है सकल कर्म ते रहित अवस्था, संपूर्ण कर्म। संपूर्ण कर्म मतलब 8 कर्म है मूल में, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 8 कर्म हैं। और इन 8 कर्मों के भेद प्रभेद करते हैं तो 148 कर्म हो जाते हैं। और नाना जीवों की अपेक्षा इनके असंख्यात भेद भी हो जाते हैं। तो समस्त कर्मों से रहित जो अवस्था प्रकट होती है, यानी ये जीव जब संपूर्ण कर्मों को नाश कर देता है, किस अवस्था में? मुनि बन करके, तपस्या करके, एकदम शुक्ल ध्यान में स्थिर होकर के, जब शरीर का कोई मोह नहीं रह जाता, अपने साथ में रखे गए पिच्छी कमंडलों का भी होश नहीं रहता, केवल आत्मा ही दिखती है, आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं, बस वहीं पर कर्मों से रहित अवस्था प्रकट होती है। मोक्ष, मोक्ष का मतलब मोक्ष अर्थात कर्मों से छूट जाना। जो अपनी आत्मा में केवल आसक्त रहते हैं, माने निर्विकल्प अवस्था, यहां तक इष्टोपदेश के अंदर कहा गया, यस्य मोक्षेपि न आकांक्षा स मोक्ष मदिगच्छति, जिसको मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं रहती, मैं मोक्ष प्राप्त करूंगा, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, मैं इसलिए ध्यान में बैठा, ये भी नहीं, सारी इच्छाओं से रहित हो जाते हैं। बस केवल आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, मेरी आत्मा भगवान आत्मा है, और वह चिंतन एकाग्र ध्यान से सहित हो जाता है। उत्तम समन्वय से एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मान्तर मुहूर्तात्, वह ध्यान, उत्कृष्ट ध्यान जो होता है, अंतर मुहूर्त ही उसके लिए पर्याप्त है, और वह उत्तम संगणन वाले को होता है, एकाग्र चिंता निरोध रूप होता है। तो ऐसे ध्यान में बैठ करके अंतर मुहूर्त में कर्मों की सारी निर्जरा कर देते हैं और आत्मा संपूर्ण कर्मों से खाली होकर बिल्कुल हल्का हो जाता है, फिर वह ऊर्ध्वगमन करता है, और जो ऊर्ध्वगमन है वही मोक्ष को ले जाने वाला है। वह मोक्ष की गति कही गई, एक समया विग्रहा, एक समय वाली गति, बस सीधे एरंड के बीज के समान, एरंड का बीज जैसे फूटता है, निकलता है जब, तो एकदम ऊपर को उछलता है। इसी प्रकार से आत्मा जब एकदम शुद्ध हो जाती है, हल्की हो जाती है, तो शरीर से निकलकर और जाकर के सिद्धालय में विराजमान हो जाती है। यही अवस्था सकल कर्म से रहित अवस्था कही जाती है। फिर उसके बाद जब कर्म छूट जाते हैं तो दिगंबर जैन सिद्धांत के अनुसार मोक्ष होने के बाद कोई जीव संसार में नहीं आता। मोक्ष जाने के बाद फिर कोई जीव संसार में आकर अवतार नहीं लेता। ऐसे अनंत अनंत जीव मोक्ष में जा चुके हैं। कोई कहेगा कि जब अनंत अनंत जीव ही संसार में है और अनंत अनंत जीव मोक्ष में पहुंच गए तो संसार खाली हो जाएगा एक दिन? खाली नहीं होता। अनंत अनंत जीवों से ये संसार भरा हुआ है और अनंत अनंत जीव मोक्ष को प्राप्त कर चुके, क्योंकि सृष्टि अनादि है, अनंत है, सृष्टि भी चलती चली रहेगी और मोक्ष की अवस्था भी चलती रहेगी। तो उसको कहा सो शिव स्थिर सुखकारी, वही स्थिर सुख को प्रदान करने वाली मोक्ष की अवस्था, जिसे शिव, निर्वाण, मोक्ष इन शब्दों से जाना गया है, परम सुखकारी है, जिस सुख के बाद कभी भी दुख नहीं आता। यह विधि जो श्रद्धा तत्वन की सो समकित व्यवहारी। अब देखो आपके लिए कहा, हमारे लिए कहा, कि इस प्रकार से जो सातों तत्वों की व्यवस्था बताई है तो उसके ऊपर जो श्रद्धा की जाती है, उन तत्वन की श्रद्धा जो की जाती है, तो सो समकित व्यवहारी, तब जाकर के व्यवहार सम्यक दर्शन प्रकट होता है। यानी हमने सातों तत्वों पर श्रद्धान कर लिया, पूर्ण रूप से श्रद्धान कर लिया, तो हम निश्चित रूप से व्यवहार सम्यक दृष्टि हैं। यही बात इसके अंदर कही गई है। देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दया जुत धारो। अर्थात सम्यक दृष्टि बन करके आप सच्चे देव जिन्हें जिनेन्द्र भगवान कहते हैं, जो आज प्रतिमा के रूप में भगवान के रूप में विराजमान रहते हैं मंदिर में, उन पर और गुरु पर जो परिग्रह रहित नग्न दिगंबर गुरु होते हैं, मुनि आरिका छुल्लक छुल्लिका रूप जो पिच्छीधारी संत होते हैं, वे गुरु नाम से कहे जाते हैं, उनको मानो। और धर्म दया युक्त सारो, और दया युक्त करुणामयी जिन धर्म को अपना सारभूत तत्व समझो, ये हूँ मान समकित को कारण अष्ट अंग युत धारो। इसी को समकित का कारण माने सम्यक दर्शन और कहीं से खरीदा नहीं जा सकता। सम्यक दर्शन कहीं पुस्तक के अंदर नहीं है, सम्यक दर्शन कहीं मंदिर के अंदर नहीं है। इस बात को जानना है कि जो मंदिर हमारे पूर्वजों ने बुजुर्गों ने बनाए हैं, जो शास्त्र छपाए हैं, जो गुरु आज दीक्षा धारण करके हमें धर्मोपदेश देते हैं, इन पर श्रद्धान करके इनको आप ये जानो कि यही हमारे सम्यक दर्शन को उत्पन्न कराने में कारण है। और ऐसे सम्यक दृष्टि बनो, यानी ऐसे सम्यक दर्शन को प्राप्त करो। वह सम्यक दर्शन आठ अंग युत होता है, अष्ट अंग युत धारो। माने हे भव्यात्मन, ऐसा व्यवहार सम्यक दर्शन आठ अंग से सहित होता है। कौन से आठ अंग हैं उसको हम आपको कल बताएंगे। आज आपको इतना ही जानना है कि जिनेन्द्र भगवान, परिग्रह रहित गुरु, दया सहित धर्म, इन पर श्रद्धान करना, इनको मानना, तो अपने दृढ़ सम्यक दर्शन का परिचय देना है। और वह सम्यक दर्शन आठ अंग से सहित होता है। उन आठ अंगों को जान करके हमें भी आठ अंगों का पालन करना है। यही आज के स्वाध्याय का सार है।